किताब है योग विज्ञान। रचयिता है आदि मुनीश्वर योगेश्वर श्री शिव मुनि जी महाराज। अध्याय है 3। विषय है श्वांस विज्ञान, षट चक्र, प्राणायाम और चक्रभेदन। श्वांस विज्ञान शरीर प्रवाह रूप से रहने वाला है। इसमें नया आता रहता और पुराना निकलता रहता है। पुराना श्वास बाहर जाता और नया बराबर भीतर आता रहता है। शरीर के लिए बाहर से शुद्ध वायु का आना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक भीतर से अशुद्ध वायु का निकलना है। पूरा पूरा पूर्ण रूप से स्वाभाविक रूप में अशुद्ध वायु को भीतर से निकल जाना चाहिए और ठीक उसी तरह से स्वाभाविक रूप से पूरा पूरा खूब शुद्ध वायु समय से भीतर चला जाना चाहिए। यदि पुराना वायु स्वाभाविक रूप से शरीर के अंग अंग और अवयव अवयव से निकलकर बाहर न चला जाए तो यह शरीर रोगी हो जाएगा। रोगी भी शरीर का वही अंग व अवयव होगा जिस अंग व अवयव से पूरा पूरा यह अशुद्ध वायु निकल नहीं जाता। ठीक इसी तरह से शरीर के अंग अंग जोड़ जोड़ और अवयव अवयव में शुद्ध और ताजा वायु पहुंच जाना चाहिए। शरीर के जिस अंग या अवयव में यह शुद्ध वायु नहीं पहुंचेगा वह रोगी हो जाएगा। शरीर के भीतर यह काम केवल नासिका द्वारा ही नहीं होता किंतु रोम कूपों से भी होता है। अब सोचना यह है कि शुद्ध वायु का शरीर के अंग अंग में आना और शरीर के प्रत्येक भाग से उसका निकलना रूपता कैसे है। श्वांस प्रश्वांस के आवागमन के रुकावट के कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण तो यह होता है कि लोग वस्त्र ढीला ढाला नहीं पहनते। शरीर के अनेक अंग वस्त्रों से कसे और ढके रहते हैं और जो अंग बहुत कस जाता है वहां से वहां पर श्वांस का आवागमन ठीक नहीं होता। दृष्टांत के रूप में धोती को ही लीजिए, बहुत से लोग इसे कमर के पास बहुत कसकर पहनते हैं। कुछ पंडित अपने सिर की पगड़ी बहुत कसकर बांधते हैं। जहाँ तक हो कपड़ा बहुत कम पहनना और जो पहनना उसे ढीला ढाला रखना चाहिए। बैठते समय कटी कमर पीठ और ग्रीवा को झुकाकर बैठने से फेफड़े के ही कई भाग सिकुड़ जाते और श्वांस का आना जाना ठीक नहीं होता। शरीर का जो अंग कड़ा कर लिया जाता है उस अंग में भी श्वास प्रश्वास का आवागमन ठीक नहीं होता। अतः सारे शरीर को ढीला ढाला और स्वाभाविक रूप में लचीला रखना चाहिए। षट चक्र हाथ पैर और बीच के तने में 6-6 चक्र होते हैं। देखिए हाथ की अंगुलियों में कितने जोड़ हैं। गिनिए, एक नख के पास है, दूसरा है उसके नीचे और तीसरा अंगुलियों की जड़ में है। इस तरह से अंगुलियों में 3 जोड़ हैं। चौथी जोड़ है मनेबंध हथेली के नीचे उसकी जड़ में। पांचवा जोड़ है कोहनी में हाथों के बीचों बीच में। छठी जोड़ है कंधे के पास हाथ की जड़ में। बस हाथ में यही 6 जोड़ हैं। इसे 6 चक्र या संस्कृत में षट चक्र कहते हैं। इसी तरह 6 गांठे पैर में भी हैं और शरीर के बीच वाले भाग में भी 6 चक्र हैं। इन 6 चक्रों के ऊपर ही वह स्थान है जिसे सातवां लोक ब्रह्मलोक व सत्यलोक कहते हैं। इसी को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। यह स्थान यहाँ पर मस्तिष्क में है जिसके ऊपर कपाल की हड्डी और सर के बाल हैं और कुछ नहीं। कुछ सांप्रदायिक योगी कहते हैं कि हमारे गुरु ने इस छठे चक्र के ऊपर भी 6 चक्रों का पता लगाया है। इस पर दूसरे ने कहा कि हमारे गुरु ने तो इसके ऊपर भी 12 चक्रों का पता लगाया है। यह सब वितंडावाद है जिस पर मूर्ख सांप्रदायिक लोग बकवाद करते रहते हैं। यह 6 चक्र 6 गांठे या जोड़ हैं। यहीं से हाथ पैर और उनके अवयव मुड़ते और झुकते हैं। नाड़ियां यहीं से मुड़ी हुई हैं। अस्थियां भी यहीं से मुड़ती हैं। इन मोड़ों जोड़ों या गांठों की सफाई न होने से यहाँ पर इतने मल और विकार जमा हो जाते हैं कि रक्त का आवागमन शरीर के प्रत्येक भाग में नहीं हो सकता। इससे शरीर वृद्धर, दुर्बल, कुरूप और रोगी होकर शीघ्र नष्ट हो जाता है और मस्तिष्क भी ठीक ठीक काम नहीं देता। इन चक्रों और शरीर के अंग अंग तथा नाड़ी नाड़ी से विकार निकालने के लिए मुनि समाज का चक्र भेदन वाला योग साधन व योग व्यायाम किया जाता है। यह संसार के सब व्यायामों से अत्यधिक सरल, सुगम, सहज, सुलभ और सर्वोपयोगी है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह साधन नित्य कर लेना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। इससे इतना ही नहीं कि शरीर के प्रत्येक अंग साफ, निरोग और निर्विकार हो जाते हैं, किंतु साधक इसी चक्र भेदन की क्रिया को करके योग का परम पद पाने के योग्य होता है। इस क्रिया को अच्छा तो यही होगा कि आप आकर हमसे सीखें, नहीं तो उस मुनिव से भी सीख सकते हैं जिसे सिखाने की आज्ञा दी गई है। इसके सिवाय यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बिना सदस्य हुए इसे आप न सीख सकते हैं और न कोई मुनि सिखा सकता है। एक बात और है, सीखकर भी इस साधन को आप किसी दूसरे के सामने नहीं कर सकते, एकांत में करना होगा। श्वास प्रश्वास का आवागमन शरीर के भीतर सूक्ष्म रक्ताणुओं के साथ होता है। मुनि समाज का चक्र भेदन वाला साधन करने से शरीर के अंग अंग, जोड़ जोड़ और अवयव अवयव का प्राण और रक्त वेग के साथ चलने लगता है। इससे शरीर भर की तमाम नाड़ियां, तमाम चक्र, तमाम अंग और पतली से पतली रक्त वाहिनी शिराएं भी साफ और स्वच्छ हो जाती हैं। इससे आयु, आरोग्य, आत्मबल, मनोबल और बुद्धिबल सब बढ़ते हैं और मन प्रसन्न रहता है। इसी साधन को करके मनुष्य परम पद का भागी होता है। इस साधन से प्रत्येक अंग का हल्का व्यायाम भी हो जाता है, जो संसार के किसी दूसरे व्यायाम से नहीं होता। संसार के दूसरे जितने व्यायाम हैं, उनसे शरीर के केवल 2-4 अंगों का व्यायाम होता है, बाकी का नहीं। मुनि समाज के इस योग व्यायाम को छोड़कर और जितने व्यायाम हैं, उनसे शरीर का लचीलापन नष्ट होता है और शरीर के अंग प्रत्यंग करते और कड़े होते जाते हैं, जिससे श्वास प्रश्वास का आवागमन शरीर के भीतर सरलता और स्वाभाविकता साथ पर्याप्त रूप या पूर्ण रूप से नहीं होता। प्राणायाम। बहुत से लोग भीतर से निकलती हुई अशुद्ध वायु को, जो प्रश्वास के साथ बाहर निकाली जाती है, नाक दबाकर रोक देते हैं। इससे अनेक प्रकार के रोग जैसे धातुक्षीणता, उन्माद, रक्तदोष, कुष्ठ, निर्बलता, दुर्बलता, दमा, खांसी, मूत्र रोग, अर्श, जीर्ण ज्वर और थाइसिस आदि अनेक प्रकार के रोग होते हुए देखे जाते हैं। बहुत से लोग हाथ से तो नाक नहीं दबाते, पर श्वास को बाहर फेंक कर बाहर ही रोक देते हैं और ठीक उसी तरह से श्वास को भीतर लेकर भीतर ही रोक देते हैं। इससे भी वही सब रोग होते हैं जो नाक दबाने से हुआ करते हैं। अशुद्ध वायु ज्यों ही निकला, फौरन उसी समय भीतर शुद्ध वायु व ऑक्सीजन का जाना आवश्यक हो जाता है। इसी से आत्मा ने प्राकृतिक रूप में ऐसा ही प्रबंध किया है। अशुद्ध वायु बाहर गई नहीं कि आत्मा फौरन बाहर से शुद्ध वायु खींचने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह से शुद्ध वायु भीतर गई नहीं कि अशुद्ध वायु को फौरन निकालने के लिए आत्मा तैयार रहती है। इन दोनों वेगों को व इनमें से किसी को आपने रोका कि आप रोग की ओर बढ़ने लगे। श्वास और प्रश्वास का स्वाभाविक, सहज, सरल और स्वतंत्र रूप में बाहर और भीतर आने और जाने देना सबसे बड़ा योग है। इसे रोकना, इसके आवागमन में रुकावट डालना योग नहीं, रोग है। श्वास को भीतर रोक देने से भीतर ही भीतर इस अशुद्ध वायु व खराब गैस का मस्तिष्क में धक्का लगता है और यह खराब और अशुद्ध वायु मस्तिष्क के सेल्स व सूक्ष्म कोष्ठकों को बिगाड़कर मनुष्य को पागल बना देती है। इसी से यह प्रसिद्ध है कि योग करने वाले पागल हो जाते हैं। आजकल लोग योग के नाम से योगियों के बताए हुए साधन को करके योगी न होकर रोगी होते और योग को बदनाम करते देखे जाते हैं। स्मरण रहे कि आजकल के मजहबी नेता और सांप्रदायिक साधु, पंडित, सन्यासी और मुल्ला तथा पादरी कोई भी योग नहीं जानता। इन लोगों ने जो साधन बतलाया है वह गलत है। उसे करके लोग अपनी आयु और बल को क्षीण करते हैं। श्वास प्रश्वास के आवागमन के साथ राम राम, शिव शिव या कृष्ण कृष्ण या और दूसरा कोई नाम जपना भी ठीक नहीं है। इससे भी श्वास प्रश्वास के आवागमन की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। सच्चा साधन तो यह है कि श्वास प्रश्वास के आवागमन को प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से आने जाने देने में सुविधा और स्वतंत्रता दी जाए। मुनि समाज के साधन में श्वास प्रश्वास को आवागमन में पूरी सुविधा और स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे श्वास का आवागमन प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में हो सके। यह तो हुई श्वास प्रश्वास की बात। जैसे पुराना श्वास बाहर न निकलने और नया तथा शुद्ध श्वास भीतर न जाने से मनुष्य स्वस्थ और जीवित नहीं रह सकता, इसी तरह से जब तक पुराना खाया हुआ अन्न बाहर न निकले और ताजा भोजन भीतर न जाए तब तक मनुष्य स्वस्थ और निरोग नहीं रह सकता। फिर वही बात कह रहे हैं कि यह शरीर प्रवाह रूप से रहने वाला है, इसमें नया आता रहता और पुराना निकलता रहता है। नित्य नया और ताजा भोजन भीतर जाता और खाया हुआ पुराना अन्न मल के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया में फर्क आते ही मनुष्य निर्बल और रोगी हो जाता है। अन्न ही नहीं, पुराने रक्त, पुराने मांस और पुरानी अस्थि भी निकलती रहती हैं और इनकी जगह धीरे धीरे क्रमशः नए रक्त कण, नए मांस और नए अस्थियनु आते और निकले हुए पुराने कणों का स्थान ग्रहण करते रहते हैं। जैसे खाया हुआ पुराना अन्न यदि इंद्रियों से समयानुसार निकल न जाए तो सड़ने लगता है, उसी तरह से शरीर के दूसरे पुराने कण और सेल्स भी यदि समयानुसार निकल न जाए तो सड़ने लगते हैं और शरीर को रोगी बना देते हैं। अब इंद्रियों से पुराने मल समयानुसार निकल जाए और शरीर के प्रत्येक अंग, अवयव और नाड़ियों से पुराने और बेकार शरीर कण व सेल्स भी समयानुसार बाहर हो जाए, इसके साधन निम्नलिखित प्रकार से हैं। चक्रभेदन। शरीर के प्रत्येक अंग, जोड़, अस्थि, मांसपेशी और नाड़ी को लचीला, कोमल, सबल, सजीव और साफ रखा जाए। इंद्रियों और उदर प्रदेश के जीवाणु व शरीराणु यदि सबल, सजीव, सशक्त, सतर्क, कार्यशील और स्वच्छ हैं तो इनमें से मल और विकार का निकलना अनिवार्य रूप से होता रहेगा। अब वह सब सबल रहें, सशक्त रहें और स्वच्छ रहें, इसका यही एक उपाय है कि इन सब अंगों का व्यायाम किया जाए। उद्यान बंध और नौलिक कर्म से उदरस्थ प्रत्येक कण और अंतड़ी का व्यायाम हो जाता है। यही नहीं कि अंतड़ियां बलवती होती हैं, किंतु उदरस्थ प्रत्येक शरीराणु सबल और स्वच्छ हो जाते हैं। जैसे नौलिक और उड्डयन से उदर स्वच्छ होता है, उसी तरह से त्राटक से नेत्र, जालंधर बंध से ग्रीवा और अश्वमुद्रा तथा बाजीकरण से मूत्रद्वार, गुदा, मूत्रेन्द्रियादि साफ, स्वच्छ और बलवती होती हैं। पर यह त्राटक, जालंधर बंध, नौलिक, उड्डयन बंध और अश्वमुद्रादि के साधन जैसे प्रचलित हैं, वे भी प्रचलित प्राणायाम की तरह हानिकारक है। इसे भी जिस तौर से दूसरे लोग बतलाते हैं वह भी बहुत ही कठिन, अनुपयोगी और हानिकारक है। पर यही साधन मुनि समाज में जिस विधि से बतलाया जाता है बहुत ही सरल, सुगम और सर्वोपयोगी हो जाता है। मुनि समाज की विधि से साधन करने से चक्रों का भेदन, नाड़ी संशोधन और शरीर के अंग-अंग और अणु-अणु का व्यायाम बड़ी सरलता और सुगमता के साथ थोड़ी ही देर में हो जाता है। यह सच्चा योग साधन है। इसमें योग के आठों अंगों के साधन भी हो जाते हैं। इससे शरीर के प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण, प्रत्येक नाड़ी और प्रत्येक अंग तथा अवयव सबल, सतर्क, सजीव, साफ, स्वच्छ और निर्विकार हो जाते हैं। अतः शरीर के प्रत्येक भाग से पुराने और मुर्दे शरीराणु बराबर निकलते रहते और नए शुद्ध तथा ताजे प्रवेश करते रहते हैं। इससे साधक का शरीर ऐसा हो जाता है कि साधक उसे जब तक चाहे रख सकता है। साधक मृत्यु के वश में नहीं रहता, किंतु मृत्यु ही साधक के वश में हो जाती है। मुनि समाज के अनुसार साधन करने वाला पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता और उसकी बुद्धि खूब तीक्ष्ण होती है। संसार में दूसरा कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो शरीर को ऐसे स्वाभाविक और प्राकृतिक दशा में रख सके। साधन करते समय आंख बंद रखते और चित्त को एकाग्र रखते हैं। ध्यान भी उसी अंग का व उसी चक्र का किया जाता है जिस अंग व चक्र का साधन किया जाता है। इस तरह से योग के अष्टांग का पालन हो जाता है जो दूसरों के बताए हुए साधन में नहीं होता। जिस चक्र का भेदन आप करते हैं उसे छोड़कर बाकी सब अंगों को अत्यंत स्थिर रखना चाहिए। मुनि समाज का सदस्य होने पर सब बातें सामने बैठाकर बड़े विस्तार के साथ बता दी जाती हैं। प्रत्येक साधन का विज्ञान इस तरह से बताया जाता है कि प्रत्येक सदस्य उसे अच्छी तरह से समझ लेता है। बाकी और सब बातें हमारी पुस्तकों को और ज्ञान शक्ति को पढ़ते रहने से मालूम होता रहता है। हमारी बनाई हुई सभी पुस्तकें आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति, शरीर बल और बुद्धिबल बढ़ाकर मनुष्य को स्वस्थ और जीवन मुक्त बनाने वाली हैं। समाप्त।